हरे कृष्ण। तो ईशोपनिषद का पहले श्लोक क्या है? ईशस्तुति। ईशस्तुति किसको याद है? अच्छा, बैठने की जगह है सब? थोड़ा आगे और आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, काफी जगह है सामने। बॉटल में जब जगह करना है तो क्या करते हैं? हम शेक करते हैं तो सेटल हो जाता है। तो ये कमरा को भी थोड़ा शेक करना होगा। अब योगेश, तुम कहाँ से आया? मैं तो तुमको वहां देखा। हरे कृष्ण। तो पहले श्लोक कौन लीड करेंगे और बाकी सब गाएंगे? कौन लीड करेगा? ओके, कृष्णदास।
ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
नेक्स्ट वर्स।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता आगृता कस्य स्विद्धनम्।
वेरी गुड। तो इसका अर्थ भी याद है? हाँ? बताओ इसका सेकेंड श्लोक का अर्थ क्या है?
जो भी जड़ और चेतन वस्तु इस जगत में है सब भगवान की है, और हमारे लिए जितना आवश्यक है और हमारे लिए।
सबको सुनाई दे रहा है? खड़ा होके बताओ।
जो भी जड़ और चेतन वस्तु इस संसार में है सब भगवान की है, हमारे लिए जितना आवश्यक है और हमारे लिए जितना भाग रख दिया गया है हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरों की संपत्ति को हमें लेना नहीं चाहिए।
वेरी गुड, थैंक यू। मंत्र दो। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीजि विशेच्छत समा एवं त्वयि नान्नथेतो अस्ति न कर्म लिप्पते नरे। तो शब्द का अर्थ है, अच्छा पहले हम ये करते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जी जी विशेषतं क्षमा जी जी विशेषतं क्षमा जी जी विशेषतं एवं त्वयि अस्ति। अच्छा, ये तीन शब्द संधि होकर क्या हुआ? नन्नथ इते अस्ति, नन्नथ इतः, नन्नथ इतः अस्ति। नन्नथ शब्द का शेष कौन शब्द से हो रहा है? आ से। न था न, ये भी एक संधि है, न अन्न था, न अन्न था संधि होकर क्या हो गया? नान न था। और नान न था इतः, तो नान न था का शब्द का समाप्ति हो रहा है आ से, और इतः का शुरू कैसे होता है? ई से। आ के पश्चात ई रहने से दोनों युक्त अक्षर क्या होता है? हाँ, ए होता है। हाँ, आ और आ के बाद ई और ई रहेगा तो वो ए हो जाएगा। सो नान्न था ईते हो गया नान्न थे था अस्ति नान्न थे तह अस्ति नान्न थे तो अस्ति। ये संधि हो गया नान्नथ नान्नथे तो अस्ति नान्नथा इतः अस्ति नान्नथे तो अस्ति। ठीक है। नान्नथे तो अस्ति ना कर्म लिप्पते नरे एवं तयि नान्नथे तोस्ति न कर्म लिप्पते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविशेच्छतं समः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजेवि अब दो लाइन एक साथ। हाँ, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजेवि चेच्छतं समः। ये एक लाइन हुआ, मैं दो लाइन बना रहा हूँ, थोड़ा शांति। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजेवि चेच्छतं समः। एवं तयि नान्नथे तोस्ति न कर्म लिप्पते नरे तो दो लाइन एक साथ बोलने के लिए तैयार सब? ओके। एवं तयि नान्नथे तोस्ति न कर्म लिप्पते नरे वेरी गुड। तो कंठस्थ हो गए हैं? हाँ, लगभग हो गए हैं। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से घर जाके थोड़ा, ये ईशोपनिषद सबके पास है? हाँ, किसके पास नहीं है? हाँ, किसके पास नहीं है? आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है। अच्छा, हाँ तो ले लेना। हाँ, स्टॉक याद है? ओके, क्लास के बाद ले लेना। हाँ, तो हाँ, शब्द का अर्थ क्या है? कुर्वन का मतलब है कुर्वन नेवेह कर्माणि, कुर्वन इव इह, कुर्वन नेवेह, कुर्वन इव इह, संधि होकर क्या हुआ? कुर्वन नेवेह। तो ये तीन शब्द का संधि है, कुर्वन इव इह। कुर्वन शब्द का मतलब क्या है? निरंतर करते हुए, निरंतर। इव इस प्रकार, इह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जी जी विशेष जीने जीने की इच्छा करे। ठीक है, जी जी विशेष का मतलब शतम 100 समाह वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी जी बीशेत छतंग समाह 100 साल तक जीने का इच्छा करे, हाँ? न क्या 200 साल के करेंगे, हाँ? मनुष्य जीवन का अवधि 100 साल का ही होता है, हाँ? अगर और कुछ ज्यादा हो गया तो अच्छा है, वो बोनस मिल गया, हाँ? जी जी बीशेत शतंग समा, जी जी बीछेत, जी जी विशेष छतंग समाह। समा का मतलब वर्ष, या एवं, आई एम सॉरी, एवं इस तरह रहते हुए त्वयी तुमको ना नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक इतः इस पद से अस्ति है ना नहीं कर्म कर्म लिप्पते बाधा जा सकता है, बाधा जा सकता है मतलब बंधन होता है। नरे मनुष्य को, तो शब्द का अर्थ सब मिल गया। कुर्बन नेवेह कर्माणी जी जी बीशेत छतंग समा एवं तई नान्नथो तो अस्ति न कर्माणी लिप्पते नारे। वेरी गुड, देखिए कंठस्थ हो गया है। अनुवाद, इस श्लोक का अनुवाद, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकता है। कैसे? ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंच जगत तांग जगत, हाँ। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, मतलब ये मान लिया, मान लेते हैं कि सारे कुछ, सब कुछ भगवान का है, भगवान हमारे लिए सब कुछ दे चुके हैं और उसको लेकर ही संतुष्ट रहना चाहिए और कुछ अन्य के संपत्ति पे लोभ नहीं करना चाहिए, तो ऐसी भावना लेकर मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करते रहे तो वो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं, जीने की इच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अंदर थोड़ा आने का जगह कर दीजिए, कोई आए हैं? कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, सुनाई दे रहा है? अच्छा, अंदर आ जाइए, हो जाएगा। बंगला में एक कहावत है, जोदी है सुजन तेतुल पता है दूजन मतलब जो सज्जन है, तेतुल का पत्ता, इमली का पत्ता कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। वो छोटा सा जगह में 2 आदमी रह सकता है, हाँ? जगह नहीं मिल रहा है आने का, आ जाओ अंदर। हाँ, जगह कर लिया आप ऐसे हो, अंदर आने से हो जाएगा। आप में से 2-1 अगर वो कुर्सी में बैठ जाएंगे तो भी और थोड़ा जगह हो जाएगा। बैठ जाओ तुम। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मार्ग केवल एक ही है, वो मार्ग क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंच जगत्तांग जगत तेना तक्तेना भुंजिता मा गृध कश्व सिद्धनम। तो आप भी बोले यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियमों से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो कर्म के बंधन के बंधन में रहना चाहिए या कर्म के बंधन से निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो कर्म का बंधन से निकलने का तरीका क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो संस्कृत नहीं आता है। मतलब क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईशावास्यम भगवान का है। ईशा आवश्यम इदम सर्वम, इदम का मतलब ये सब कुछ, इदम सर्वम जत किंच जगतांग जगत। भगवान आपके लिए सब कुछ दे चुके हैं, दिया ना, ना क्या किसी का अभाव है? सही, ओके, बहुत अच्छा। जत किंच जगतांग जगत तेना तक तेना भुंजिता, उसको उपभोग करके ही, भोग करके ही सुखी रहो। मां गृधा, मां का मतलब क्या है? नहीं, गृधा का मतलब क्या है? लोभ, कश्य सीध और दूसरे को धनम संपत्ति, दूसरे का जो है उसके प्रति कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। तो और इसके तो इसका मतलब हुआ इस भावना लेकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसी भावना लेकर हम अगर कार्य करते हैं तो कर्म के नियम के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। अच्छा ठीक है, तुम बाद में क्लास देना। तुम्हें अच्छा गौरा, यू कैन रीड द तात्पर्य।
तात्पर्य, कोई भी मरना नहीं चाहता, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक काल तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं देखी जाती अपितु जाति, समाज और राष्ट्र में सामूहिक रूप से देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीव स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्म का देहांतर कहलाती है और यह देहांतर मनुष्य के अपने कर्म बंधन के कारण है। जीव को अपनी जीविका के लिए कार्य करना पड़ता है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांध लेता है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के नियम से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं, किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना होता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के बंधनों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के उपदेश भगवत गीता में विशद रीति से विवेचित हैं, अतएव भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक ग्रंथों में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि मनुष्य भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह भगवान की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सही ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते, तब मनुष्य को नैष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से बांधता नहीं। वास्तव में किसी को भी भगवान की शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, परंतु निम्न स्तर पर कोई तुरंत भक्ति के कार्यकलाप प्रारंभ नहीं कर सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के लिए अपने स्वार्थ के लिए चाहे वह सीमित हो या व्यापक कर्म करने के आदि है। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय भोग का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तृत कर दिया जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद आदि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं। लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीवित रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने से में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य से संबंधित करे या भगवान केंद्रित भावना से संपन्न करे। भगवत गीता का कथन है कि भगवत केंद्रित कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह जन्म मृत्यु के विकास चक्र के खतरे में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो इसे उसका दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख सकता कि यह क्या हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, अन्यथा दीर्घ जीवन का अपने में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई सौ वर्ष तक और शायद हजारों वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ आयु तक जीवित रहकर धोकनी की तरह सांस लेने रहने या कुत्ते और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाने में कोई तुक नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कई अच्छा है। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में की गई है क्योंकि उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्रतिभू प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं। क्योंकि इससे अगले जीवन में उसे मनुष्य योनि सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का अन्य अवसर प्राप्त हो जाता है।
बस लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, लास्ट और एक पैराग्राफ यहाँ है, मैं शायद ये शायद बाद में छपाया गया होगा। मनुष्य ईश केंद्रीय कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। इस ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बताया, सब जिंदा रहना चाहते हैं, है ना? बल्कि बात यह है कि कैसे जीना चाहिए। ऐसे कुत्ता बिल्ली जैसा जीने से कुछ फायदा है? जानवर जैसे जीने में कुछ फायदा है? जानवरों का जीवन कैसी है? आहार निद्रा भय मैथुन अंश, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी समान। ये जो कार्य है ये पशुओं भी करते हैं। पशु जीवन का आधार होता है ये चार कार्य, आहार निद्रा भय मैथुन। तो अब प्रश्न ये है कि मनुष्य को क्या एक पशु जैसे जीना चाहिए या मनुष्य को और किसी उन्नत प्रकार के उन्नतर जीवन को यापन करना चाहिए? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और एक उपनिषद में ये वर्णन हुआ है, मतलब श्रीमद् भागवत में या ब्रह्म सूत्र में इसका वर्णन हुआ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जब मनुष्य जन्म मिला है अब क्या करना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा का उन्नत स्तर में जब हम आते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ये ईशावास्यम इदम सर्वम। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा। भौतिक जगत के परे और एक जगत है, ये भौतिक जग वस्तु के परे और एक वस्तु है। भौतिक वस्तु के परे जो वस्तु है वो क्या है? आत्मा। भौतिक वस्तु के परे आत्मा है ना? ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, हम जो कुछ देख रहे हैं सब भौतिक है। बल्कि कौन देख रहा है? जो देख रहा है वो क्या भौतिक है या और कोई? हम सब भौतिक है या भौतिक जगत से परे है? ये हम है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है चेतन, ब्रह्म का मतलब है सजीव, जिसमें जीवन है। जड़ वस्तु में जीवन रहता है? नहीं, बल्कि जहां आत्मा का विकास होता है, जहां आत्मा कार्यकारी होता है, वहां चेतना का विकास होता है। हम सब चेतन है ना? तो ये चेतना कहां से आया? चेतना आत्मा से आता है। आत्मा इतना चेतन है कि इस भौतिक शरीर को भी चेतन बना देता है ना? ये भौतिक शरीर जड़ है, बल्कि आत्मा की प्रभाव से ये भौतिक शरीर भी चेतन बन गया है। तो ये जो आत्मा जो है ये भौतिक नहीं है और भौतिक से परे है, ये है भौतिक का परे जो है वो है ब्रह्म, मतलब चेतन, मतलब आत्मा आत्मिक आधि आत्मिक आध्यात्मिक आत्मा को केंद्र बनाकर आत्मा संबंधी। तो हम जब समझ लेते हैं, हम जब उपलब्धि कर लेते हैं कि हम आत्मा है, तब हमें क्या करना चाहिए? आत्मा क्यों, आत्मा कहां से आया है, आत्मा कौन है, आत्मा कहां से आया है और आत्मिक रूप में हमें क्या करना चाहिए? आत्मा का तृप्ति क्या खाने पीने से होगा? आत्मा का तृप्ति किससे होता है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से आत्मा का तृप्ति होता है। जब तक आत्मा का भगवान के साथ संपर्क नहीं बनता, तब तक आत्मा अतृप्त रह जाता है। बल्कि जब आत्मा भगवान के साथ आत्मा का संपर्क जोड़ लेता है आत्मा, तब वो तृप्त हो जाता है। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के पश्चात हमें क्या मालूम होता है, हमें क्या ज्ञान होता है? जब हम भगवान को पहचान लेते हैं, तब हमें क्या उपलब्धि होता है? ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, सारे संसार के भोग करने वाला है भगवान, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यद्यपि सब कुछ भगवान का है, बल्कि भगवान इतने कृपालु है कि हमारे लिए भी भगवान सब कुछ बांट दिया है। तुमको क्या चाहिए? अच्छा, मिल जाएगा। तुमको क्या चाहिए? ठीक है, मिल जाएगा। तुमको क्या चाहिए? मिल जाएगा। हा? तो ऐसे अगर ऐसे सब कुछ मिलने के पश्चात भी अगर हम सोचेंगे कि हमको और कुछ चाहिए, तब वो सही नहीं है, ऐसी भावना सही नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन क्या है? खाने का प्रयोजन होता है। कितना खाना का प्रयोजन होता है बताओ? कितने चपाती? तीन चपाती, ठीक है, पांच चपाती, दस चपाती, हाँ तो मिल रहा है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना कि ओ की 25 चपाती खा रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचना। हाँ, तुम्हारे सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का जरूरत होता है मिल रहा है। हाँ, तुम्हारे जो कुछ जरूरतें हैं मिल रहा है, बस तो सुखी रहो। भगवान तो सब कुछ दे चुके हैं, असुखी बनने का क्या कारण हो सकता है? इसलिए जत किंच जगतांग जगत और तेना तक तेना भुंजिता। और सबसे भयंकर, सबसे भय उत्पादक वस्तु क्या है? मृत्यु। और मृत्यु का मतलब क्या होता है? जो कुछ हम यहां हम जो कुछ प्राप्त हुए हैं, वो सब छोड़ के चले जाना होगा, है ना? जो कुछ है सब छोड़ के चले जाना होगा। तो ये जो मृत्यु का, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, ये बंधन भयंकर है। तो ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि हम जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु का भय है, बल्कि और अधिक भय क्या है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, कौन सा शरीर मिलेगा? 84 लाख जोनियां हैं, मतलब 84 लाख प्रकार का शरीर है। ये शरीर किसी भी एक शरीर मिल सकता है, और उनमें से कोई शरीर तो कीड़े का शरीर है, पशु का शरीर है, वृक्ष का शरीर है। अगर ऐसा कुछ शरीर मिल जाए तो कैसे क्या होगा? हाँ, एक कीड़े का शरीर मिला, मच्छर का, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? एक वृक्ष का शरीर मिला, मिल सकता है, नाल कुबेर और मणिग्रीव का मिला था ना। तो ऐसा शरीर मिलना, मिलने से कैसा लगेगा? तो ये कोशिश करना पड़ेगा कि वैसा शरीर न मिले। और ये शरीर कैसे मिलता है? ये शरीर मिलता है कर्म के कारण। जैसे हम कार्य करते हैं, जिस उसके कारण हमें ऐसा शरीर मिलता है। इसलिए ये चार पाप काम जो है वो करना नहीं चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, जुआ पाशा इत्यादि खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस कार्य के कारण हमें फिर से इस भौतिक जगत में आकर कष्ट प्राप्त होना होगा। परंतु हम अगर भगवान को सेवा में लग जाते हैं, भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, तब ये कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। कर्म के बंधन और नहीं रहेगा, क्योंकि तब ये कर्म खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा। कर्म का जो प्रक्रिया है, कर्म का क्या है, प्रक्रिया क्या है? कर्म का प्रतिफल, एक्शन रिएक्शन। कार्य करते हैं और उस कार्य के कारण हमें रिएक्शन मिलता है, प्रतिक्रिया मिलता है, क्रिया के कारण प्रतिक्रिया मिलता है। तो ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे प्रतिक्रिया नहीं होगा। कैसे वो हो सकता है? जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया हमको भोगना होता है, और अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसका फल कौन भोगेंगे? वो भगवान ले लेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमको, हमारा नहीं रहेगा। भगवान के लिए कर रहे हैं, चलो उसको बहु भगवान संभालेंगे। तो ऐसे भगवान के लिए कार्य करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे जो कुछ हम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, स्टडी, नौकरी कर रहे हो, करो, अपना बिजनेस संभाल रहे हो, करो, घर संभाल रही हो, घर संभालो, जो कुछ तुम कर रही हो करते रहो, केवल भगवान के लिए करते रहो। भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो भगवान के लिए जब हम कार्य करते हैं तब उस कार्य का ना तो कोई प्रतिक्रिया बनता है, परंतु उस कार्य के कारण हमारे पूर्व का जो कर्म के बंधन है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। पूर्व में जो हम कार्य किया है उसका जो प्रतिक्रिया है, भगवान की सेवा करने से उस प्रतिक्रिया का निरसन हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। तो ये है साधारण विचार। तो इसलिए कैसे कार्य करना चाहिए भगवान के? तब जो ऐसे कार्य करते हैं वो 100 साल तक जीना जी सकते हैं, बल्कि जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है उसका जीवन का क्या कीमत है? हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे हरे। प्रश्न है किसी को? यस,
अभी कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में पढ़ा था। तो कर्म का मतलब है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना, और विकर्म का मतलब दुरुपयोग करना।
अकर्म का मतलब है जिस काम करने से कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। इस भौतिक जगत का बंधन से मुक्त हो जाता है, मतलब भक्ति। अकर्म है भक्ति, कर्म है शास्त्र के निर्देश अनुसार जो कार्य है वो करना। भक्ति का मतलब है अकर्म। इस कर्म करने से हम भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और विकर्म है वो जो कर्म हमको भौतिक बंधन में फिर से डाल देता है, जिस कार्य नहीं करना चाहिए विकर्म, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो है विकर्म। That's why it is advised that you stay in the association of devotees. Stay in the association of good devotees.
How can we constantly meditate on the instructions of Srila Prabhupada?
Again, association of devotees. When you're in the association of devotees, you'll be reminded about Prabhupada. But when you're away from the association of devotees, then you'll be in difficulty. Always stay in that good association. That's one thing. Another thing is, you see, if that association is not available, then read Prabhupada's books. Because through Prabhupada's books, you're associating with Prabhupada. So either you associate with good devotees, if that is not possible, read Prabhupada's books. Even when you are in association of good devotees, read Prabhupada's books. Because that is the real association. Hare Krishna. Yes? Achche reaction mein burai ye hai ki usko fal bhogne ke liye yahan rehna padega. फिर से यहाँ आना पड़ेगा। आना चाहते हो? अच्छा, तो इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छा बुरा जो कुछ है भगवान के सौंप दो, भगवान के पास अर्पण कर दो। अच्छा, आध्यात्मिक व्यक्ति भी धार्मिक व्यक्ति है, बल्कि हर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। जैसे धर्म करते हैं, दान देते हैं, अच्छा काम करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दूसरे को भला करते हैं, बल्कि अगर उसका उद्देश्य होता है कि इस भौतिक जगत में सुख भोग है ना, कोई व्यक्ति दान देते हैं, सोचते दान देने से पुण्य होगा और पुण्य के कारण सुख मिलेगा। ये कार्य का जो फल जो है और उद्देश्य जो है वो आध्यात्मिक नहीं, वो भौतिक है। यहां हमें सुख मिलेगा इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। धर्म कार्य हो रहा है, बल्कि ये धर्म की उद्देश्य है इस जगत की भोग, समझा? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वर्ग है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के निर्देश के अनुसार हम काम करते हैं। उद्देश्य क्या है? अर्थ, पुण्य। पुण्य के प्रभाव से क्या होता है? काम का तृप्ति होता है, कामना का तृप्ति होता है। और ये तृप्ति से जब हम देखते हैं उससे भी मजा नहीं आ रहा है तो बोलते हैं चलो यहां से निकल जाए, तो ये है मोक्ष, मुक्ति। बल्कि मुक्ति के परे है भक्ति। तो ये भक्ति जो है ये है आध्यात्मिक कार्य, ठीक है? हरे कृष्णा। तो अच्छा, साक्षात्कार के बारे में मत सोचो। मतलब ये बात है, मतलब ये है कि तुम भगवान को देखना चाहते हो या भगवान तुमको देखना चाहते हैं? फायदा क्या होगा? भगवान को देखकर क्या बोलोगे? क्या करोगे? अगर भगवान के साथ भगवान को दर्शन हुआ तो क्या करोगे उसके बाद?
जैसे ध्रुव को हुआ था वैसे हम भी तप कर
सकते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान को अगर दर्शन मिला तो क्या करोगे, तब क्या होगा? नाचते रहोगी?
इस जन्म का ऐसा हो जाएगा कि भाई इस जन्म में मनुष्य ही होने मिले अपन को, तो भगवान से साक्षात्कार
हुआ। मंदिर में आके किसका दर्शन हो रहा है?
तो
भगवान के, देखो भगवान का, इसलिए मैं पूछ रहा था, वैसे भगवान का दर्शन सही आंखों से होना चाहिए। दुर्योधन भगवान को देख रहा था, है ना, बल्कि फायदा क्या हुआ? तो तुम क्या दुर्योधन की आंखों से देखना चाहते हो, हाँ? या अर्जुन की आंखों से देखना चाहती हो? तो अर्जुन और दुर्योधन का, दुर्योधन में अंतर क्या है? अर्जुन है भक्त और दुर्योधन है विद्वेषी। तो भगवान को भक्ति से ही दर्शन करना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा था। भगवान को अगर दर्शन करोगे तो क्या, तो क्या करोगे? जैसे एक ये है, कहावत है, कोई एक बहुत दुर्बल व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति जंगल में गया काठ लाने को, लकड़ी लाने के। तो लकड़ी जब इकट्ठा किया तो देखा इतना भारी हो गया, उठा नहीं सका। तो बोला हा भगवान, तो भगवान हुआ आ गया। तो भगवान बोला क्यों बुलाए क्यों? वो बोले ये लकड़ी का गांठ थोड़ा उठा दो तो। तो ऐसे भगवान ऐसे दर्शन से कोई फायदा होगा नहीं। भगवान को दर्शन सही रूप से होना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय शु विलोकयंती। जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके आंखें प्रेम रूप अंजन के द्वारा रंजित हो गया और उसके कारण वो निरंतर अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। जब आंखें बन जाएगी तब हम निरंतर दर्शन करेंगे, और जब आंखें नहीं बनेंगे तो दुर्योधन की तरह भगवान का दर्शन होगा, देखते हुए भी पहचानेंगे नहीं। एक प्रश्न है, गुंजन व्यास उज्जैन। हरे कृष्ण गुरु महाराज, वेरी नाइस क्लास महाराज। आई हैव वन क्वेश्चन दैट आई हैव रेड इन टुडेज न्यूज़पेपर, द साइंटिस्ट हैड फाइंड दैट स्पिरिचुअलिटी इंक्रीजेस द मेंटल प्रॉब्लम्स। महाराज प्लीज टेल मी अबाउट इट, इज इट ट्रू? यस, स्पिरिचुअलिटी कॉजेज अ बिग मेंटल प्रॉब्लम बिकॉज इट टेल्स द माइंड डोंट थिंक ऑफ मैटर, थिंक ऑफ कृष्णा ऑल द टाइम। इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द माइंड। मन के लिए एक प्रॉब्लम है ना, कि सारा हर समय केवल भगवान का ही चिंतन करते रहा। कितना कुछ किया गया है, टीवी में कितना चैनल बना है, टीवी में कितना प्रोग्राम हो रहा है, और मन बोलता है उस तरफ मत जाओ। तो ये तो मेंटल प्रॉब्लम है। बल्कि ये ऐसा मेंटल प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, हाँ? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मन मना भव, केवल भगवान के बारे में ही सोचो। मन का कार्य क्या है? भगवान के बारे में सोचना। ईशावाश्यम इदम सर्वम। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज शाम को 7:30 बजे हम आएंगे और शाम को कुछ प्राइज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसको मिल रहा है? राधा रानी माता जी ने बांटेंगे मेरे द्वारा। ओके थैंक यू। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि।